26 मई दिन शनिवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। हॉलीवुड के नामचीन फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मुकदमा।
This defendant used his position, money and power to lure young women into situations.
ओडिशा के कटक में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, पेश करेंगे 4 साल का रिपोर्ट कार्ड।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज आजी विश्व गोटे उच्च स्तर नेता सी ओडिशा रा कटक शहर को आसी निजो रिपोर्ट कार्ड तक।
और सुनिए,
तो जब मौलाना साहब ने फोन लिया और नेहरू आए फोन पे, तो उनका क्या जवाहरलाल तुम्हारी उंगली में दर्द होने लग गया क्या?
पुण्यतिथि पर करेंगे नेहरू को याद, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामलों में अभियुक्त बनाए जाने के बाद कल हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन ने न्यूयॉर्क पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ चले मीटू अभियान के बाद एंजेलिना जोली, ग्वानेथ पॉलत्रोव, कारा डेलेविने जैसी मशहूर हस्तियों ने उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आयरलैंड में गर्भपात कानून को लेकर हुए जनमत संग्रह के बाद 2 एग्जिट पोल में इसे उदार बनाए जाने को लेकर बहुमत मिला है। एग्जिट पोल के अनुसार 69% लोगों ने गर्भपात कानून वापस लेने के पक्ष में मतदान किया है। कानून उदार बनाए जाने के पक्ष में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर भी हैं। ये मतदान आयरलैंड संविधान के 8वें संशोधन को पलटने को लेकर हुआ था, जिसमें गर्भपात कानूनन अपराध है। आयरलैंड में मां की जान के खतरे की स्थिति में ही गर्भपात हो सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बैठक फिर से हो सकती है। वार्ता के कार्यक्रम को रद्द करने के एक दिन बाद ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मोलभाव जारी है और अगले महीने तय किए गए वास्तविक कार्यक्रम पर दोनों नेता मिल भी सकते हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने बातचीत की संभावना को लेकर जानकारी दी।
Had some possibly some good news on the Korea summit where it may.
मुझे कोरिया सम्मेलन को लेकर अच्छी खबर मिली है। अगर हमारे राजनयिक इस मुद्दे को उठाते हैं तो हम इस पर वापस पीछे जाएंगे। कुछ समय पहले राष्ट्रपति ने एक नोट भेजा है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये सामान्य है और बड़े सम्मेलन के लिए कोशिशें हो रही हैं। राजनयिक अभी भी काम पर हैं और रक्षा विभाग के नज़रिए से ये अच्छी चीज़ है। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के शब्द और आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर ने सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि वो सड़कों पर जाम कर रहे ट्रक ड्राइवरों को हटाए। देश में तेजी से बढ़ते डीजल के दामों के विरोध में पिछले 5 दिनों से ड्राइवरों ने ये कर रखा है। टेमेर ने कहा है कि विरोध निलंबित करने के लिए गुरुवार रात ढुलाई कंपनियों के साथ वह समझौते पर पहुंच गए थे, जो नहीं हो पाया है। वन ट्रकर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को ये नाकेबंदी बंद करने को कहा है, जिसके कारण ब्राजील में अव्यवस्था फैली हुई है। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इस विरोध प्रदर्शन के कारण सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हैं। पूर्वी यूक्रेन में मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH17 को गिराने में रूस का हाथ होने के डच आरोपों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खारिज किया है। इस विमान में सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से अधिकतर नीदरलैंड्स के थे। डच सरकार ने कहा है कि वो ये साबित कर चुकी है कि 2014 में जिस मिसाइल ने विमान को निशाना बनाया, उसमें रूसी सेना का सीधे हस्तक्षेप था। राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा है कि रूसी रॉकेट ने विमान को नहीं गिराया था। मैं फिर से दोहराता हूं कि जो हुआ उसको लेकर बहुत से अनुमान हैं। इसके यूक्रेनी मिसाइल होने की भी बात कही गई थी, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि हमें शामिल किए बिना इसमें हमारे होने की बात का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। चीनी दूरसंचार कंपनी ZTE पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से दखल दिया है। पिछले महीने कंपनी पर अपने फ़ोन के लिए महत्वपूर्ण अमरीकी पुर्जे खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमरीका का आरोप था कि कंपनी अमरीकी अधिकारियों से झूठ बोल रही है और ईरान, उत्तर कोरिया पर लगाए गए अमरीकी प्रतिबंधों के खिलाफ कर्मचारियों को दंड नहीं दे रही है। लेकिन अब राष्ट्रपति ने यह प्रतिबंध हटाने की बात कही है, बदले में ZTE कंपनी को पर्याप्त जुर्माना देना होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा, नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। हॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में शुमार रहे हार्वी वाइनस्टीन को न्यूयॉर्क की एक अदालत में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्य मामलों में अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ये कहा कि वाइनस्टीन ने युवतियों को फुसलाने के लिए अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल इस तरह से किया कि वो उनका यौन शोषण कर सकें। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद शाहिद।
बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त बनाए गए हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन से पत्रकार उनसे उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछ रहे थे। कल न्यूयॉर्क पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने कहा कि वे इन सभी आरोपों में दोषी साबित नहीं होंगे। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाइनस्टीन ने अपने पैसे और ताकत का लालच देकर युवा महिलाओं का शोषण किया। अभियोजन पक्ष के वकील जॉन इलियोजी ने कहा, अभियुक्त ने अपनी पहुंच, ताकत और पैसे से युवा महिलाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया जिससे वो उनका यौन शोषण कर सकें। हमारी जांच जारी है और हम दूसरी पीड़िताओं को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी सामने आएं। ये थे अभियोजन पक्ष के वकील जॉन इलियोजी के शब्द। वाइनस्टीन के खिलाफ 70 से अधिक महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन उनके खिलाफ ये कार्रवाई केवल 2 मामलों के तहत हो रही है। हालांकि वाइनस्टीन के वकील बेन्यामिन ब्राफमैन ने कहा है कि सबूत ही आरोपों को झूठा साबित करेंगे।
Many of these allegations are long overdue, quite frankly, having been
इसमें से कई आरोप बहुत पुराने हैं और जिन कथित घटनाओं के बारे में बताया गया है वो सालों पहले घटी हैं। जब ये हुई तब पुलिस में इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई और मुझे उम्मीद है कि जब आरोप लगाने वाली महिलाओं से जिरह होगी तो हमारी इसमें बढ़त होगी। ये थे बचाव पक्ष के वकील के शब्द। वाइनस्टीन के वकील बेन्यामिन ब्राफमैन ने पुरजोर तरीके से कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कास्टिंग काउच का भी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ बुरे व्यवहार के लिए वाइनस्टीन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
Mr. Weinstein did not invent the casting couch in Hollywood, and to the extent that there is bad behavior,
Weinstein ने हॉलीवुड में कास्टिंग काउच की खोज नहीं की थी। उद्योग में बुरा व्यवहार है जो इसमें शामिल नहीं है। मामले के ट्रायल में बुरा व्यवहार शामिल नहीं है। ये तभी होता है जब आप जानबूझकर कोई आपराधिक काम करते हैं और वाइनस्टीन ने जोरदार तरीके से इसे खारिज किया है। ये थे बचाव पक्ष के वकील के शब्द। वाइनस्टीन को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने $10,00,000 की जमानत राशि दी है। साथ ही उन्हें GPS ट्रैकर पहनना होगा और अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।
हॉलीवुड के नामचीन फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मुकदमा। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। नमस्कार, भारत में रुख कर रहे हैं। भारत का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा जा रहे हैं, जहां वे अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर कटक में एक आम सभा को संबोधित करेंगे और पिछले 4 साल में अपनी सरकार की सफलताओं का हिसाब भी देंगे। जानकार इसे ओडिशा में बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
ओडिशावासियों को हर्षर विषय हो कि सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज विश्वर गोटे
ओडिशा के लोगों के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि देश का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के एक ऊंचे दर्जे के नेता नरेंद्र मोदी ओडिशा के कटक शहर आकर अपना रिपोर्ट कार्ड पूरी दुनिया को साझा करेंगे और उसे पढ़कर सुनाएंगे। प्रधानमंत्री के कटक दौरे के बारे में सूचना देते हुए ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र। अपनी सरकार की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मोदी द्वारा उड़ीसा और कटक को चुना जाना राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस समय राजनैतिक गलियारों में जिस बात को लेकर सबसे अधिक चर्चा है वो है मोदी का पूरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ बोलने के लिए भाजपा का कोई नेता फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन सभी ये आस लगाए बैठे हैं कि मोदी सचमुच पूरी से लड़ेंगे। उन्हें लगता है कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में ये एक गेम चेंजर बन सकता है। उनका आकलन है कि 2014 में मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का जो फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला था, वही फायदा पूरी से लड़ने पर उड़ीसा में भी मिल सकता है। मौजूदा स्थिति में नवीन पटनायक को शिकस्त देने का उन्हें बस यही तरीका नजर आ रहा है। उधर नवीन पटनायक ने भी भाजपा की चुनौती का सामना करने के लिए पुरजोर मुहिम शुरू कर दी है। कल बंदरगाह शहर पारादीप में महानदी सुरक्षा अभियान के समापन पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा,
केंद्र बीजेपी सरकार चुप रही बात दुख रो
केंद्र की बीजेपी सरकार का चुप रहना दुखद है। उड़ीसा के बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ सरकार के काम का समर्थन कर रहे हैं और उड़ीसा आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। गौरतलब है कि इस अभियान का समापन 30 तारीख को होना था, लेकिन मोदी के दौरे के मद्देनजर 5 दिन पहले और वो भी दौरे के एक दिन पहले इसका समापन कर बीजद ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि महानदी के सहारे नवीन 2019 में चुनावी नदी पार होते हैं या मोदी को पूरी से उतार कर भाजपा उनका खेल बिगाड़ती है। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
इधर उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2014 में लोकसभा के आम चुनाव में हुकुम सिंह कैराना से ही चुनाव जीते थे और 2 साल के बाद बतौर सांसद उन्होंने कैराना में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब मृगांका सिंह का कहना है कि पलायन यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने मृगांका सिंह से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं।
मुद्दे तो निरंतर विकास और सुशासन और शांति व्यवस्था यही है।
क्या किसी तरह का एंटी इनकम्बेंसी चीज भी दिखाई पड़ रही है?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक कमिटमेंट है यहाँ पे आम मतदाता का, उनके विचार में अगर यहाँ पे कुछ भला हो सकता है पब्लिक का, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पे लाभ दे रही हैं आम मतदाता को, आम पब्लिक को, उसके प्रति उसका जुड़ाव है।
कैराना जो जिस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाना गया वो था यहाँ पे पलायन का लोगों का, अब इस बाई इलेक्शन में वो इशू है? अभी
निश्चित रूप से उस समस्या का हल भी हो चुका है और निदान भी हो चुका है।
आपके कहने का मतलब कि पलायन वाला मुद्दा पहले था, अब वो ख़त्म हो चुका है?
100% ख़त्म हो चुका है, बल्कि स्थिति यह है कि 15 से 20 परिवार वापस लौट के भी आए हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं जो उन्होंने पहले बंद की हुई थी। ऑल राइट माइंडेड वोटर्स इन कैराना विल वोट फॉर BJP।
राइट माइंडेड
हु बिलीव इन गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट।
सिनोनिम तो नहीं हो सकता ना कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो है वो बीजेपी का पर्यायवाची है और बाकी चीजें जो है दूसरी पार्टियों के पर्यायवाची है?
वर्तमान में तो है।
आप बीजेपी नेता होने के नाते ऐसा कहेंगी, कॉमन पीपल तो ऐसा नहीं कहेगा।
नहीं, आप गांव में जाके देखिए।
हाँ, हम और बहुतों से बात की है हमने।
हाँ,
सभी तो ऐसा नहीं कहते हैं।
अधिकतर तो ऐसा कहते हैं।
नहीं, खैर एक चीज़ और है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा इशू शुरू से ही रहा है और चूंकि ये चीनी मिलों का इलाका है, गन्ना किसानों की समस्या। कल से मैं कई जगह लोगों से बात की मैंने और ये कहा कि हमको ये प्रॉमिस किया गया था कि 14 दिन के भीतर भुगतान हो जाएगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराने भुगतान भी नहीं हुए, ऐसा किसानों का कहना था।
हाँ, ये गंभीर समस्या थी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, आई थिंक जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 3 times मोर हुआ है इस वर्ष, इस कारण ये पेमेंट लंबित चल रहा था।
2014 के बाद जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं खासतौर से लोकसभा के, वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि वो उत्साहित करने वाले नहीं हैं। UP की बात देखा जाए तो लेटेस्ट अभी गोरखपुर और फूलपुर में बाई इलेक्शन हुए और यहाँ पर आपके खिलाफ सभी एक होकर के लड़ रहे हैं, इन सब के बावजूद आप इतनी होपफुल हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है?
मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि जो गोरखपुर और फूलपुर में हुआ वो लो वोटर परसेंटेज की वजह से हुआ, पार्टी ने कुछ हज़ार वोटों से ही इलेक्शन लूज किया है। यहाँ पे तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो बहुत ही सक्रियता से लोगों को प्रेरित कर रहा है।
कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में BJP की उम्मीदवार मृगांका सिंह से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
तो ਵਧਾਵਾ ਵਧਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਲਸ ਨਾਲ
ਸੋ ਅਦਲਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ
महिलाओं के नजरिए को कितना महत्व देता है मीडिया।
अगर रेप होता है तो आप लोग सारे मतलब न्यूज चैनल वाले रेप को ही एकदम चला रहे हैं और मतलब मेंटली आप लोग एकदम प्रेशराइज कर देते।
क्या ये आवाजें मीडिया तक पहुंचती हैं?
मैं क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहती थी बट मेरे को बेसिकली बोला जाता है क्राइम लड़कियों के लिए नहीं।
सुनिएगा छात्राओं के मन की बात, मेरी यानी दिव्या आर्य की विशेष पेशकश, शनिवार 26 मई शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में बीबीसी शी बदले नजरिया।
तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट कॉपर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने बीबीसी संवाददाता विनीत खरे को दिए एक ईमेल इंटरव्यू में दावा किया है कि कुछ लोग उनकी कंपनी और भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अनिल अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए विनीत खरे से।
तूतीकोरिन में प्रदर्शन कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों का किया धरा है जो न सिर्फ वेदांता बल्कि आकर्षक निवेश स्थान के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश जो दिए हैं उससे सच बाहर आएगा। मैं तूतीकोरिन में लोगों की मौत पर बहुत दुखी हूँ। कंपनी स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई स्टैंडर्ड्स का पालन करती है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सभी नियमों का पालन किया है। इस संकट के मौके पर हम तूतीकोरिन के लोगों को जो भी मदद चाहिए हम उनकी मदद करेंगे। हम उनके दुख के मौके में उनके साथ खड़े हैं। कंपनी ने सरकार और प्रशासन से आसपास के इलाकों में रहने वाले समुदायों और हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की अपील की है।
ये थे वेदांता के प्रमुख अनिल अग्रवाल की ओर से बीबीसी को दिया गया जवाब जिसे सुना रहे थे विनीत खरे। वैसे वेदांता के साथ विवाद का नाता पुराना रहा है। इस कंपनी को लेकर कब और कैसे विवाद हुए हैं बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली।
वेदांता के लगभग सभी प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह के विवाद के घेरे में रहे हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड वेदांता के भारतीय उपक्रम का नाम स्टरलाइट है। स्टरलाइट छत्तीसगढ़ के कोरबा में एल्युमिनियम कंपनी चलाती है जिसमें साल 2009 में हुए एक चिमनी हादसे में 42 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बाल्को वेदांता, चीनी कंपनी शैनडोंग इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और GDCL के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में राज्य सरकार ने बख्शी आयोग भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी गई थी लेकिन सरकार ने इसे कभी आम नहीं किया। इस सरकारी कंपनी को वेदांता के द्वारा खरीदे जाने के समय से ही यानी साल 2001 से ही विवाद शुरू हो गया था। वेदांता ने इस कंपनी को 551 करोड़ रुपए में खरीदा था लेकिन ये कहा जा रहा था कि सरकारी कंपनी की कीमत इससे कहीं अधिक थी। इसी तरह उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके रायगढ़ और कोरबा में बॉक्साइट खनन के मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जिसने डोंगरिया कोंड आदिवासियों को इस पर अपना मत ग्राम पंचायतों में रखने को कहा। सभी 12 पल्ली सभाओं यानी ग्राम पंचायतों ने खनन के प्रस्ताव को एक मत से नकार दिया। वेदांता ने लांजीगढ़ में 10 लाख टन की क्षमता वाली एक रिफाइनरी का निर्माण किया था जिसकी क्षमता नियमगिरी में खनन के बलबूते 6 गुना बढ़ा दी गई थी। हालांकि तब तक कंपनी के पास खनन का कोई औपचारिक आदेश नहीं था। तमिलनाडु का मामला तो सबसे ताज़ा है। यहां 4 लाख टन तांबा उत्पादन की क्षमता रखने वाले तूतीकोरिन के कारखाने के विरोध में महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय नागरिक कारखाने की वजह से वहां फैल रहे प्रदूषण का विरोध कर रहे थे। पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। साल 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि प्लांट से ऐसे पदार्थ वातावरण में जा रहे हैं जिनका घातक असर हो रहा है। बाद में हाईकोर्ट ने प्लांट को बंद करने का हुक्म भी दिया था। कंपनी इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। एक मामला गोवा का है जहां शाह कमीशन ने साल 2012 में अवैध खनन के लिए जिन कंपनियों को दोषी ठहराया था उसमें सेसा गोवा शामिल थी। सेसा गोवा वेदांता की लौह अयस्क खनन कंपनी है। एक अनुमान के मुताबिक अवैध खनन से राजकोष को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सभी पट्टों को रद्द किया जाए और अब से सरकार बोली लगाकर इनके खनन की इजाजत दें।
वेदांता के साथ विवाद का नाता पुराना, जानकारी दे रहे थे फैसल मोहम्मद अली। अखबारों की सुर्खियां जान लेते हैं। शाहिद बताएं जल्दी से।
जी संदीप जी, कल आईपीएल का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला गया जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 रनों से हरा दिया। इस पर अमर उजाला हेडिंग लगाता है, राशिद के दम पर हैदराबाद फाइनल। असल में कल राशिद ने बहुत अच्छा दमदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 34 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। इसके अलावा आते हैं कि बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कर्नाटक में विश्वास प्रस्ताव और मेजर लीतुल गोगोई के ऊपर। मेजर गोगोई पर दैनिक जागरण लिखता है, मेजर गोगोई की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। हिंदुस्तान लिखता है, सेना ने मेजर गोगोई के खिलाफ जांच शुरू की। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, सेना प्रमुख ने कहा, दोषी हुए तो मिलेगी सजा। इसके अलावा कल जैसे कि शेख हसीना आई भारत के दौरे पर, उसको लेकर भी जनसत्ता ने खबर बनाई है कि रोहिंग्या मुद्दे पर बांग्लादेश ने मांगी भारत से मदद।
और मैं देख रहा हूँ वो तस्वीरें भी छपी हैं जिस पर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बैठी हैं, फिर शेख हसीना बैठी हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। बहुत शुक्रिया श्रोताओं। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वो न सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री थे बल्कि एक आम भारतीय के साथ उनका कनेक्ट गजब का था। नेहरू की 54वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन के कुछ मानवीय पक्षों पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल विवेचना में।
अगर कोई बाहर का हमला हो और फौजी हमला हो तो हमारी फौज है, हमारी हवाई जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान है जो उसमें काम करते हैं, वो उससे बचाएंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, ना हवाई जहाज बचाते हैं, आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है।
नेहरू की जिंदगी के कई शेड्स थे। भारतीय जनमानस के महानायक नेहरू, आजादी की लड़ाई लड़ते नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाते नेहरू, फैशन आइकन नेहरू, बेहतरीन किताबें लिखने वाले नेहरू, आशिक मिजाज नेहरू वगैरह वगैरह। नेहरू के जीवन का सबसे प्रबल पक्ष था भारत के लोगों और आम आदमी से उनका कनेक्ट। डॉक्टर जनकराज जय ने 8 वर्षों तक नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम किया है।
एक बार बहुत कोई डेलीगेशन द्वारा मिलने आए थे पंडित जी से, साउथ ब्लॉक में थे और पंडित जी लेट हो गए, लेकिन यह है कि ही यूज टू टेक लिटिल नैप इन लंच टाइम। केम होम और देखा कि वो जो नथु इनका सर्वेंट था वो इंतजार करते करते, क्योंकि पंडित जी का ये फरमान था कि मेरे आने से आधा घंटा पहले आप ठंडी मशीन एयर कंडीशनर इसको आधा घंटा पहले खोलो। उसने आधा घंटा पहले खोल लिया, पंडित जी का पता भी इतने बजे आते हैं, लेकिन लेट हो गए। अब वो नथु वही सो गया दरवाजे पर इंतजार करता करता। पंडित जी जब आए तो उन्होंने देखा ये सो रहा, और सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मत छेड़ो इसको, सोए रहने दो। सो दिस वाज हिज पर्सनालिटी।
जहां तक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात है, जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने नेहरू के बारे में उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुआ यूं कि नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित एक बार शिमला के राजभवन में रुकी और वहां का बिल उन्होंने नहीं चुकाया।
राजभवन में आजकल तो फ्री सारा चलता है, लेकिन उस वक्त हिसाब रखा, हिसाब तो अब भी रखते होंगे शायद, राइट ऑफ करते होंगे, तो वो उनका हिसाब चलता रहा तो शायद 2,500 रुपया उनके जिम्मे था विजय लक्ष्मी पंडित के। तो भीमसेन सचर हुआ करते थे, तो उन्होंने ये जब रकम देखी तो उन्होंने पंडित जी को लिखा कि देखिए ये 2,500 उन्होंने खर्चे थे पैसे, तो अभी तक मिले नहीं, वो चलते रहते हैं, तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के बहन ने ऐसा किया, तो उसका क्या करें। कहने लगे देखो भीमसेन, मैं तुम्हें एक दम तो नहीं भेज सकता, लेकिन 5 किश्तों में तुम्हें पैसा दे दूंगा।
विजयलक्ष्मी पंडित की बात चली है तो बहुत पहले उन्होंने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनका अपने बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हुआ था।
मैं उनसे 10 वर्ष छोटी थी, मगर चूंकि हम लोग इस तरह से पले थे तो बहस तो बहुत होती थी और मुखालफत भी होती थी, एक दूसरे से हम झगड़ा भी करते थे, मगर अंत में कुछ ऐसा होता था कि वही जो कहते थे वो मैं कर ही लेती थी। बाद में मैं सोचती थी कि ये बात मैंने क्यों की, खासकर जब मैं राजदूत हो चुकी थी। कई ऐसी बातें हुई कि जिनमें मैं सहमत नहीं थी अपने गवर्नमेंट से, मसलन वो हंगरी के मसले के ऊपर। मैं यहाँ थी लंदन में, मैं बुलाई गई वहाँ, मुझसे कुछ कहा गया यहाँ कहने के लिए जो कि मैं समझती थी ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्रों में कृष्णा मेनन ने और हमारे नेताओं ने कुछ और कहा तो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, मगर मैंने गलत उसको समझा, तो उसके ऊपर मेरी कुछ भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ।
सरदार पटेल नेहरू से 13 साल बड़े थे। कई नीतिगत मामलों पर सरदार से गहरे मतभेद के बावजूद नेहरू निजी रूप से उनका सम्मान करते थे। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं।
सरदार पटेल का घर पंडित जी के घर के बहुत पास था, तो वो हमेशा पैदल जाते थे वहां पे, और उनको कहा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, जब मुझसे कुछ बात करनी है मैं आऊंगा। मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे तो वहां मोटर में बैठ के हमेशा जाते थे, गपशप करते थे उनसे, और टेलीफोन पे ये कर्टसी थी कि फोन खुद मिलाते थे और बात करते थे उनसे। एक दिन उन्होंने एमओ मथाई जो उनके सबसे बड़े प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको कहा कि जरा मौलाना साहब से बात कराइए। तो जब मौलाना साहब ने फोन लिया और नेहरू आए फोन पे तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल तुम्हारी उंगली में दर्द होने लग गया क्या? तो उसने मौलाना आज के बाद ये हरकत नहीं करूंगा।
वैसे तो नेहरू बहुत हंसमुख थे लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो सारी हदें पार कर जाता था। उनके सुरक्षा अधिकारी रह चुके KF रुस्तम जी अपनी किताब आई वाज नेहरूज शैडो में लिखते हैं,
1953 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली अपनी पत्नी के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें नेहरू के मशहूर गुस्से का नजारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। हुआ यह कि जैसे ही जहाज की सीढ़ियां लगाई गई वहां मौजूद करीब 50 कैमरामैन मक्खियों की तरह जहाज के चारों तरफ खड़े हो गए। जैसे ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उतरे पीछे खड़ी भीड़ भी आगे आ गई और धक्का मुक्की होने लगी। नेहरू का पारा चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कैमरामैन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। किसी एक शख्स ने नेहरू के लिए कार का दरवाजा खोला, नेहरू ने गुस्से में वो दरवाजा बंद कर दिया और फूल के एक बड़े से बुके से लोगों की पिटाई करने दौड़ पड़े।
इसी तरह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को भी नेहरू के गुस्से का कोप भाजन बनना पड़ा।
एक रोज आई कोई 6:30 बजे एक फाइल नेपाल पर, और उसमें लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर का खत नेपाल के बादशाह को। तो मैंने भाई रख दो, अब रात को यहाँ हो गई है, कल सुबह आके पढ़ लूंगा इसको। सुबह जाना था मुझे सेक्रेटरी जनरल को छोड़ने हवाई अड्डे पर, वो जा रहे थे मंगोलिया। तो साहब मैं फिर वहाँ पता लगा कि उनका जहाज लेट है, तो हम गप लगाते रहे, कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द फाइल। 10 बजे करीब एक आदमी मेरे पास आया, कैसा रहा, पंडित जी बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे SP खन्ना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह जी ये फाइल आप अंदर मत ले जाइए, इतने नाराज़ हैं कि आप कुछ फेंक देंगे वो। तो मैं साहब चला गया फॉरेन सेक्रेटरी के यहाँ, MG देसाई के साहब, ये लीव इट हियर एंड गो, ही इज़ वेरी अपसेट। फिर साहब मैंने दूसरे दिन पता किया कि हुआ क्या, तो साहब पता लगा कि 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर एजुजर अपने दफ्तर आ गए। तो वो गए फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ के, MJ हैव यू सीन माई लेटर टू किंग ऑफ नेपाल? तो उन्होंने कहा नो सर, व्हाई नॉट, इट हैजंट कम टू मी। तो साहब वो गए, खन्ना को पकड़ा प्राइम सेक्रेटरी में, ये क्यों नहीं गई फाइल मेरी फॉरेन सेक्रेटरी को? उन्होंने कहा सर वो सेक्रेटरी जनरल को भेज दी थी। तो उन्होंने क्यों भेज दी थी? उनको याद करना इससे कि साहब सारे कागज़ जो आपसे आते हैं वो उन्हीं के जाते हैं, तो मैं भी पता करता हूँ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी नटवर सिंह से कि वो लेटर कहाँ गया। खन्ना जी आए मेरे कमरे में, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि साहब वो तो एयरपोर्ट पे गए हुए, और उन्होंने कहा ये फिर ये खोलो तुम ये अलमारी, वो सब वो चाबी तो उनके पास है। बाय देन टेम्परेचर हैड गॉन टू 102 डिग्रीज। तैयब जी साहब ने कहा कि सर वो बड़ी दिलचस्प खत है आपका, तो रख लिया होगा। उन्होंने कहा आई एम नॉट रिटन द लेटर फॉर नटवर सिंह बेनिफिट, गेट होल्ड ऑफ हिम, सेंड द पुलिस, ब्रेक ओपन इज अलमारा। जैसा फिर मैं एक हफ्ते तक आई डिडंट गो, रास्ता था उनके कमरे से सामने होकर नीचे, तो मैंने दूसरा रास्ता लिया एक हफ्ते के लिए।
27 मई 1964 को जब नेहरू का निधन हुआ तो उनकी मेज पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये चार पंक्तियां लिखी हुई मिली थी।
द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
अभी कहां आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको, मिलो मुझको।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं मोहम्मद शाहिद से।
BBC समाचार। यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामलों में अभियुक्त बनाए जाने के बाद कल हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन ने न्यूयॉर्क पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आयरलैंड में गर्भपात कानून को लेकर हुए जनमत संग्रह के बाद 2 एग्जिट पोल में इसे उदार बनाए जाने को लेकर बहुमत मिला है। एग्जिट पोल के अनुसार 69% लोगों ने गर्भपात कानून वापस लेने के पक्ष में मतदान किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह बैठक फिर से हो सकती है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। bbchindi.com आपके साथ है।